Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Tasmat उपासको देहात उत्क्रम्य, स्थूल शरीर से निकलकर. कैसे निकलता है? स्थूल शरीर से. मना षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान निकर्षति. गीता का 15वां अध्याय नित्कर्ष उत्कर्षम. उत्क्रमण के बारे में शरीर से निकलना. इसीलिए शरीर के पांचवें वायु का नाम है उदान वायु. इस शरीर से तुम्हें निकालने वाली जो वायु है उस वायु का नाम है उदान वायु. प्राण अपान समान व्यान और उदान. उदान वायु उत्क्रमण कराती है सभी को समेटकर. सभी को समेट के मैंने सूक्ष्म शरीर को समेट. पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, प्राण अपान समान व्यान, इन सब को लेकर उदान स्थूल शरीर से निकलता है. बस मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थम निकर्षति. उत्क्रामन्तम् स्थितम् वापि भुञ्जानम् वा गुणान्वितम् विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषाः. देहात् उत्क्रम्य, उत्क्रमण करने के बाद वह उत्क्रमित उपासक अर्चिरादिना देवयानेना जलयान नवयान. नवयान का नाम क्या है बोलो? एरोप्लेन. नवयान का नाम क्या है? एरोप्लेन. जलयान का नाम क्या है? शिप. थलयान का नाम क्या है? बस, ट्रेन. ये सब क्या है? यान है. इस धरती में तुमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला यान थलयान, और पानी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला यान पानी जहाज, जल जहाज, और आकाश में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला यान हवाई जहाज, एरोप्लेन, और यहां से स्वर्ग ले जाने का यान पुष्पक विमान देवयान, और वो देवयान पुष्पक विमान स्वर्ग तक जाता है, आगे नहीं जाता है. और यहां जिस देवयान की बात कही गई है वह हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक पर्यंत जाता है. हाँ, तो उसको देवयान. देखो, दिखाई पड़ने का जो बात है ना, तुम जो कह रहे हो दिखाई नहीं पड़ता है, और जिसको दिखाई पड़ने की जो बात करते हैं वो चक्षु गोलक के माध्यम से जो देखेगा वह, क्योंकि चक्षु गोलक भौतिक है, मेटेरियल है, चर्म चक्षु है. परसों आएगा ये त्रिनेत्रम की व्याख्या में, जरूर क्लास में आना तुम. 23 तारीख का जो त्रिनेत्र में यही व्याख्या होगी. चर्म चक्षु है, वो मेटेरियल है, भौतिक है, इसलिए वो मेटेरियल भौतिक वस्तु को ही देखेगा, क्योंकि स्थूल शरीर को देख सकता है, लेकिन वहां जो जाने वाला है वो सूक्ष्म शरीर है, तो वहां चक्षु गोलक तो है ही नहीं, तो इसलिए वह चक्षु गोलक से न देखकर सीधे इंद्रियों से देखेगा. इसलिए आप उसको नहीं देख सकते, सूक्ष्म को हम नहीं देख सकते. तो विशेश्वर्यम ब्रह्म प्राप्य, विशेश्वर्यम ब्रह्म प्राप्य माने हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति, यानी ईश्वर भाव की प्राप्ति. यहां ईश्वर भाव बताया रहे. विशेश्वर्यम प्राप्य, विशेश्वर्यम अनुभूय. प्राप्य का मतलब विशेश्वर्य भाव का अनुभव करके. तत्रैव केवलं प्रत्यस्तमित भेद, फिर उसके बाद वहीं उसको प्रत्यस्तमेतम भेद, सारे भेद वहां अस्त हो जाएंगे, बाद में वहां जाकर ब्रह्म ज्ञान उसको प्राप्त होगा, क्योंकि यहां उसने सुना था इसलिए वहां फलीभूत होगा। तो भेद पूर्णानंदाद्वितीय ब्रह्मात्मानं ज्ञात्वा केवलम आत्मकाम मुक्तो भवती, तो वहां जाने के बाद तब जाकर वह विदेह मुक्त होगा, समझिए ना। विद्वान निर्विशेष पूर्णानंदाद्वितीय ब्रह्म विज्ञानात् अशेष गंत्री गंतव्य है ना, गंत्री गंतव्य गमनादि भेद प्रत्यस्तम, उसके ये तीनों भेद अस्त हो गए, प्रत्यस्तम खत्म हो जाएंगे। प्रत्यस्तम प्रत्यस्तम मय अद मयात विनैव उत्क्रांति, मयात प्रत्यस्त मयात सब भेद का प्रत्यस्त हो जाने के कारण, अस्त हो जाने के कारण, नष्ट हो जाने के कारण विनैव उत्क्रांति, उसको फिर वहां उत्क्रांति के बिना देवयानम च ब्रह्मज्ञान सम ब्रह्मज्ञान समंतरम जीवन मुक्तो ब्रह्मज्ञान समंतरम ब्रह्मानंदम अनुभूय आत्मरतिरात्मतृप्त आत्मनेवांत सुखो अंतरारामो अंतरज्योति, सारी गीता में आई है ये बात जीवन मुक्तों के लिए। इति आत्मक्रीड़ा आत्मरति आत्ममिथुन आत्मानंद इव स्वराज्य भूमि, तो ज्ञान का फल ये हो गया, यही उसको वह प्राप्ति हो जाएगा। स्वयं महिम्नि अमृतो अवतिष्ठते तद हेतुत्वात् बाह्य विषय परित्यागेन, बाह्य विषय परित्यागेन ब्रह्मण्याधाय वाङ्मनः काय निष्पाद्यम्, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, बताया ना वहां उस तरह से। यच्छत वांग मनसी प्राज्ञ तदिच्छित ज्ञानमात्मनि इत्यादि कठोपनिषद में, ब्रह्मण्याधाय वांग मन काय निष्पाद्यम श्रौत स्मार्त लक्षण कर्म कृत्वा विशुद्ध सत्तो योगारूढ़ो भूत्वा समाधि साधन संपन्न, ये सब होते हुए यही ज्ञान प्राप्ति द्वारा जीवन मुक्ति का अनुभव कर लेना चाहिए। इस बात को गीता में कहा, उसका यहां उदाहरण दे रहे हैं। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः, योगी युंजीत सततम प्रयत्न करता हुआ, सतत प्रयत्न करता हुआ आत्मानं रहसि स्थितः, एकांत में अपने आप को एकाकी यत चित्तात्मा, यत संयत चित्त आत्मा, चित्त को आत्मा में लगाकर निराशी इंद्रियों से विषय को ग्रहण न करते हुए है ना, इंद्रियों से विषय को ग्रहण करना आसी, तुम लोग इस समय खा रहे हो कि बैठे हो कथा सुन रहे हो, खा रहे हो, आसी हो तुम लोग, खा रहे हो कान से शब्द खा रहे हो आसी तुम भोक्ता हो, किसका भोग कर रहे हो, शब्द विषय का भोग कर रहे हो, रसगुल्ला नहीं खा रहे हो लेकिन शब्द विषय तो खा रहे हो, कान से खा रहे हो आसी, तो निराशी नहीं हो, बाहर के शब्द सुन रहे हो तो तुम लोग आसी, आसी माने भोक्ता खाने वाला, निराशी बाहर के कोई विषय न आंख से रूप न कान से शब्द न नाक से गंध न त्वचा से स्पर्श न जिह्वा से रस, निराशी रपरिग्रह कोई संग्रह न करके अपरिग्रह, परिग्रह माने संग्रह करना, ये भी मुझे चाहिए, आज नहीं तो कल चाहिएगा, है ना। दिल्ली में हमारे एक महात्मा थे, उनकी आदत थी बाहर कुछ भी दिखाई पड़े उसको उठा लिया और कमरे में ले जाके रख लिया। पेपर दिखा उठा के कमरे में रखा, प्लास्टिक देख ली उसको उठा के कमरे में रखा, जो भी दिखाई पड़े उठा के कमरे में रखा, बड़ा संभाल संभाल के रखते थे। परिणाम ये हो गया कि उनके जो कमरा था वो खाली सोने के लिए खाट थी, बाकी कुछ नहीं, सारा भरा हुआ था। ऐसा लगता था कि वह डंपिंग साइड है, कबाड़खाना, क्या भर रखा था। किसी किसी लोगों की आदत हो जाती है, वो आदत है, आवश्यकता नहीं है तो भी लाके रखना, आवश्यकता ना हो तो भी उसको संभाल के रखना। उनसे कहा जाए कि ये तुम क्यों रख रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है, इसका क्या उपयोगिता है, इसको क्यों रख रहे हो, फेंक दो बाहर। नहीं नहीं, अरे भाई आज काम में नहीं आ रहा है, कभी न कभी काम में आएगा। मुझे काम में नहीं आ रहा, किसी न किसी को काम में आएगा। अब हो गई बात, ये पागलपना है कि नहीं, ये है कि नहीं, किसी को काम आएगा, मुझे ना आवे तो ना आवे, दूसरों को काम आएगा। अब होता यही था कि किसी को कुछ चाहिए तो इधर उधर खोजा, कहीं कुछ नहीं मिला तो फिर उसी के पास जाते थे, चेतनानंद उसका नाम था, बोले चेतनानंद के पास जाओ मिल जाएगा। तो किसी को सुई चाहिए, कहीं कुछ लगाना हो, कहां खोजे तो बोले चेतनानंद के पास जाओ, उसी के मिल जाएगा फट। किसी का एक बटन गिर गया, कोई बटन के लिए चाहिए तो उसी के यहां जाओ बटन मिल जाए, जो चाहो उसके यहां मिल जाता था। फिर हम भी जाते थे वही खोजने, तो फिर कहता था वो, देख तूने कहा था ना ये क्यों रखते हो कचरा, आज तुझे काम आ गया कि नहीं। ये हमने कहा अच्छा और लाओ रखो। ये बेचारा जब शरीर छोड़े तो कबाड़ खाना था, सब निकाल निकाल के फेंका गया। तुम मरोगे फिर इसका क्या होगा, बोले हम मरेंगे तो भी काम आएगा, ऐसा करते थे। उसको बोलते हैं परिग्रह, जिधर से जो मिले लाया। अभी हम लोग यही तो करते, बच्चा जब से पैदा होता है तब से वह संस्कारों का परिग्रह करता है, परिग्रहण। उसको तुम क्या बोल रहे हो कुछ पता नहीं, लेकिन वह ग्रहण कर रहा है सूक्ष्म रूप से, कानों से संस्कार ग्रहण कर रहा है, हर दृश्य को देख रहा है, बड़े गौर से देख रहा है और वो ग्रहण कर रहा है। लोग कहते हैं ना कि टीवी बड़े ध्यान से देखता है, क्योंकि वो चलता फिरता है नहीं स्क्रीन में, वो हिलता डुलता है तो वही उस ध्यान जाता है। तो यही ये परिग्रह और यही समस्या है। और महर्षि पतंजलि ने तो यहां तक कह दिया है कि तुम्हारी जो याददाश्त कम क्यों होती है उसका कारण बता दिया है, ये ज्यादा परिग्रह करने से ये स्मरण शक्ति कम होती है। ज्यो ज्यो तुम परिग्रहों को हटाते जाओगे त्यों त्यों तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ती जाती है। और यदि तुम्हारी चित्तवृत्ति धारणा यदि अपरिग्रह में प्रतिष्ठित हो जाए तो तुम जन्म कथनता संबोध, ये फलश्रुति महर्षि पतंजलि का सूत्र है, ये योग सूत्र। अपरिग्रह स्थैर्यम जन्म कथनता संबोध, तुम्हारे चित्त की धारणा यदि अपरिग्रह में स्थिर हो गई तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सारी प्रसंग तुमको प्रत्यक्ष हो जाएगा। तुम्हें यह पता चल जाएगा कि पूर्व जन्म तुम गधा थे कि गधी थे, हाँ? जन्म कथनता संबोध, तुम कुत्ते थे कि बिल्ली थे, जन्म कथनता जन्मांतरीय सब प्रसंग। जैसे नारद जी को हुआ था कि नहीं, नारद जी को पूर्व जन्म की कथा सब याद हो गई कि नहीं, हाँ? मेरी मां पहले दासी थी, मैं दासी का पुत्र था, संतों के पास मैं जाया करता था, बच्चा था, मां सेवा करने जाती थी और शाम को फिर मुझे पकड़ कर ले आती थी, सुबह लेके जाती थी, मुझे संतों के बीच में छोड़ देती थी, मैं संतों के साथ रहता था, वो ब्रह्म विचार शास्त्र विचार करते थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी मैं उनके पास बैठता था। अब मेरी मां सब काम करती थी, तो जब भोजन का समय होता था तो मां पहले संतों को खिलाती थी, संत जब खाना खाने लगते थे मैं उनके आगे घूमता था, तो हर संत अपने पत्तल में से अपना जूठा मुझे देते थे, मैं पकड़ता था, खाता था, वो देता था, उसका भी खाता था, वो देता था, उसका भी खाता था। उससे धीरे धीरे संतों के प्रसाद से मेरे चित्त की चांचल्यता हटती गई, मेरे जीवन की चांचल्यता हटती गई, तो संतों का सत्संग मुझे समझ में आने लगा। तो जो जो सत्संग सुनने समझ में आने लगा त्यों त्यों मुझे बड़ा आनंद आने लगा। एक दिन की बात थी, सुबह उठकर जब मेरी मां भागवत की कथा शुरू हो गई है, ये इसी तरह करते भागवत की कथा। एक दिन मेरी मां उठी और मेरे का हाथ पकड़कर संतों के पास, महात्माओं के पास जाने लगी, तो बीच में सर्प ने मेरी मां को काट लिया और मेरी मां मर गई। पहले तो मृत्यु क्या है मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे लगा ये सो गई, उठाने लगा तो उठती नहीं है। तब तक कोई गांव के किसान लोग आ गए, देख लिया उन लोगों ने, थोड़ी दूर में मरा हुआ सर्प देख लिया, उसके सर्प के काटने से उसका शरीर एकदम नीला पड़ गया था जहर से। सब लोगों ने कहा मुझे कि अरे तेरी मां तो मर गई, अब कभी नहीं उठेगी, तो क्या करना है? तो गांव ले, सब गांव वालों के सहयोग से मैंने मां के चिता बना ली और आग लगा दिया। अब कहां जाएं हम? तो उसी रास्ते से धीरे धीरे महात्मा लोग जहां थे वहां आए, तो महात्मा भी चले गए, क्यों चौमासा खत्म हो गया था, चौमासा खत्म होते ही महात्मा दूसरी जगह चले गए, वहां तो महात्मा भी नहीं। अब मैं कहां जाऊं? उधर मां मर गई, इधर साधु चले गए। तब हरिद्वार के बारे में उन्होंने सत्संग में चर्चा की थी, फिर उसे गंगा के किनारे किनारे उत्तराखंड के तरफ चला, गांव शहर हरिद्वार पहुंचा, गंगा स्नान किया, पिपल के पेड़ के नीचे बैठा, ध्यान लगाया, तो भगवान नारायण के सत्संग में जो स्वरूप बताया था उसके चिंतन करते करते वही स्वरूप मेरे हृदय में आ गया। बड़ा आनंद आ रहा था, सारी थकान खत्म हो गई, सारा भूख प्यास निवृत्त हो गया। तो अचानक जो हृदय में जिस स्वरूप को देखा था उसको मैं बाहर देखने लगा, तो गायब, कुछ भी नहीं है। तब भगवान ने कहा बेटा ये तुम्हें ध्यान में मैंने अपना स्वरूप जो दिखाया था, मेरे प्रति तुम्हारी रुचि राग बढ़े इसके लिए दिखाया था, अब जब तक तेरा ये प्रारब्ध जन्य शरीर रहेगा दोबारे तूने मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा। अब ये शरीर नष्ट होने के समय तक की तू प्रतीक्षा कर, प्रारब्ध समाप्त होने की प्रतीक्षा कर, ये शरीर नष्ट होने के बाद मैं तुझे दर्शन दूंगा और एक दिव्य जीवन दूंगा, जो शरीर हमेशा रहेगा, कभी मरेगा नहीं, और उस शरीर में तू हमेशा जहां चाहे जब चाहे तू मेरे दर्शन करता रहेगा। इसी तरह आकाशवाणी हुई, तब से मैं प्रतीक्षा करता रहा। एक दिन समय आ गया, प्रारब्ध समाप्त हो गया वेद व्यास जी, तो शरीर नष्ट हो गया। तब भगवान कृपा से दिव्य शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, अब मैं आवाज गति आनंद में विचरण करता हूं। आप सुनाइए क्यों रो रहे हो, ये क्या हुआ? अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। नारद जी की वृत्ति अपरिग्रह में स्थिर होने के कारण उनके पुनर्जन्म की कथा याद हो गई। तो यही प्रसंग यहां है, अपरिग्रह। अब हमारे को तो बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि बाहर जो दिखा लेके रखो, ये तुम्हारे काम आएगा, लेके रखो तुम्हारे काम आएगा, ले हम वही करते रहे, कचरा भर रखा है यार। तो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं जहां तुम बैठे हो वो इतना छोटा कमरा है, बहुत छोटा कमरा है, अंगुष्ठ मात्र, हृदय कितना बड़ा है, अंगुष्ठ परिमाण का बताया गया ना हृदय, है ना। और उस अंगुष्ठ परिमाण के अंदर तुम रह रहे हो, और वहां तो तुम आसानी से रह रहे हो। इतने छोटे कमरे में तुम सारे संसार को भर रखा है। वही नित्यानंद के चेतनानंद की तरह भर रखा है, सारे संसार के कचरा भर रखी है। अब तुम कहते हो कि भगवान तू भी हृदय में आ जा बैठ जा, तू भी हृदय में आ जा बैठ जा। भगवान आए तो देखे जगह ही नहीं है तो क्या बैठे, यहां चला जाता है, है? इसलिए तुम हृदय को खाली रखो ताकि भगवान जिस समय आए बैठ सके। हाँ, उनका तुम खाली रखो और किसी को आने न दो। कबीर जी ने तो यहां तक कह दिया है, जामे दुजा न समाए, हैं? प्रेम गली मेरा का ऐसा है, प्रेम गली इति सांगरी जामे दुजा न समाए। और उसमें तुम सारे संसार को घुसाने चाहते हो तो भगवान आएगा तो कहां आएगा, कहां रहेगा? तुम और तुम्हारे मित्र प्रेम भगवान रहे, बस जगह खाली। सवरे ने जैसे घर झाड़ू लगाया, कुटिया में किसी को आने ही नहीं दिया, भगवान का खाट रखा है, झाड़ू लगाती रही, बैठती रही, एक पत्ता भी उसके कुटिया के अगाड़े नहीं गिर पाया, फेंकी उसने। भगवान आ गए, खुशी से बैठ गया, देख लो। ये क्या है, अपरिग्रह पर इतने लेक्चर हो गया। वो अपरिग्रह पर, हाँ, योगी इंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशिर परिग्रह एवं युंजन सदात्मानं योगी विगत कल्मषः। इस तरह जब योगी साधना करता है तो योगी विगत कल्मषः, सारे कल्मष से वह रहित हो जाता है। कालुष्य, कालुष्य माने यही अविद्या है। अविद्या काला होता है कि सफेद? सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम स्मृति, तब आनंद से ब्रह्म का स्पर्श कर पाता है। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मानि इच्छते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। ये ज्ञान का फल है जीवन मुक्ति का। समम पश्यन ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम नहि नस्ति आत्मनात्मानम ततो याति पराम गतिम इति गीता स्मृते है। इस क्या सिद्ध हुआ, श्रुति स्मृति सभी पुराणों ने यही सिद्ध किया है कि ध्यानी को क्रम मुक्ति की प्राप्ति, विश्व ईश्वरीय भाव की प्राप्ति, पश्चात ब्रह्म ज्ञान के द्वारा विदेह मुक्ति, ज्ञानी को यही जीवन मुक्त भाव की प्राप्ति, अनुत्क्रमण वो उत्क्रमण नहीं करता, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते अत्रैव समवलीयन्ते। तो ज्ञान का फल जीवन मुक्ति, ध्यान का फल क्रम मुक्ति विदेह मुक्ति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।